پھر اگلا نقطہ، مسلم فوج کی مادی بے سر و سامانی کا رقت انگیز منظر شہداء کی تجہیز و تکفین کے وقت سامنے آیا. ذرا سا میں آپ کا شعور چاہتی ہوں ادھر. آج اللہ نہ کرے ہمارے لوگوں میں سے کسی کی موت کی خبر آئے. کوئی ناروے میں مر جاتا ہے اگر، کیا کیا پروٹوکول ہیں، کہاں سے اٹھاتے، کہاں لے جاتے، کتنے لوگوں کو حرکت میں کر دیتے ہیں. آدھا آدھا جہاز صرف رشتہ داروں کا ساتھ جاتا ہے. دیکھیے، بہترین لوگ بہترین زمانے میں اور شہادت کی حالت، اور ذرا دیکھیے کہ ان کے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے. کیا ہے سنیے گا، جملہ یعنی کل 70 میتیں تھیں، 70، مگر ان کے لیے کفن کا انتظام کرنا مشکل تھا. مصعب بن عمیر کی ناش پر صرف سر کی جانب کپڑا ڈالا جا سکا اور پیروں پر ازخر گھاس رکھ دی گئی. ان حالات کی جب بھی یاد آتی تو مسلمانوں کی آنکھیں ڈوب ڈوبا جاتی. یہ حالات خود گواہ ہیں کہ مسلم ریاست کے لیے جنگ کرنا کتنا مجبورانہ اقدام تھا. یعنی مسلمان کسی طرح بھی جنگ کرنے کے قابل نہیں تھے. ہم ریسورسز کی بات کرتے رہتے ہیں، حالات کی سازگاری کی بات کرتے ہیں، کوئی سازگار حالات نہیں تھے جس میں احد ہوئی. مگر جب یہ مجبورانہ اقدام کرنا پڑ گیا تو انہوں نے ہر کمی کی تلافی اپنے نظریہ حیات کے یقین اور اپنے عظیم نصف العین کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی رفاقت سے کی. آپ نے اس سے کیا سیکھا؟ آج کے بعد اپنی زندگی سے یہ جملہ نکال دیں کہ میرے حالات سازگار نہیں ہیں، آج کل میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں. دیکھیے، حالات خراب ہیں نا، حالت ٹھیک کر لیں. آپ کو کوئی آنے سے روکتا ہے نا، آپ گھر سے بیٹھ کر کام کرنا شروع کر دیں. آپ رونی شکل بنا کر بیٹھیں، رائڈ نہیں ہے نا، پیدل چلنا شروع ہو جائیں. پابندیاں ہیں نا، پابندیوں کی ازالے کی دعا کریں. ایک اسٹوڈنٹ کسی کورس میں تھی تو اس نے بہت ہی دکھ بھرا سا میسج چھوڑا کہ ان کے اوپر کچھ پابندیاں لگ رہی ہیں اور یہ اور وہ، اور وہ ایک چھٹی نہیں کرتی. خیر، قصہ مختصر پڑھ کے دعا اور اچھی نصیحت دی. کل میسج تھا ان کا، کہتی الحمدللہ میرے شوہر نے مجھے اجازت دی ہے. کیوں بھلا دیے؟ مجھے پتہ ہے، اللہ کے اوپر نظر لگاتے ہوئے، کیونکہ وہ ہار نہیں مانی انہوں نے. وہ تڑپتی رہیں، گھر سے سنتی رہیں، ایک آدھ کلاس ان کی گھر سے ہوئی ہے، اللہ نے راستے کھول دیے. ہم ٹھنڈے ہو جا، ہم کہتے ہیں شکر ہے کسی نے روکا ہے، شکر ہے آج مجبوری ہے. اور وہ جملہ میں نے شاید دسیوں بار بولا ہے، ایک بار پھر بولنے کی اجازت دیجیے کہ بعض دفعہ مجبوریوں کے پردے میں ہماری منافقت چھپ جاتی ہے. کرنا ہم نے کام ویسے بھی کوئی نہیں تھا، شکر کریں کسی مجبوری میں پھنس گئے، کسی نے پابندی لگا دی، کسی نے روک لیا، آج تمہیں نہیں جانے دوں گا. ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، آج کے نہ جانے کا الزام تو ان کے سر پہ جائے گا. کہہ دیں گے جی آنے نہیں دیا. کچھ مہمانوں کو دے کر شکر کرتے ہیں، چلو یہ ہو گیا. دعا کریں کہ اللہ ہمارے اندر سے جما دے. آپ کو پتا کہ ہمارے اسلاف میں سے عالم تھے، تو وقت کے بادشاہ کے ساتھ اختلاف شروع ہو گیا، تو جو ان کی تعلیمات تھیں یا جو ان کا فتویٰ تھا وہ بادشاہ کے اپنے مفادات پہ چوٹ ڈالتا تھا. قصہ مختصر، انہوں نے تو کہا نہیں، جو بات سچ ہے میں وہی کہوں گا. بات بڑی، جیل میں ڈال دیا گیا. اب ان کے جو شاگرد تھے نا، وہ پریشان تھے کہ بادشاہ کا معاملہ ان کے ساتھ جو بھی ہو، لیکن ہمیں تو ایک استاد چاہیے. تو ان کا جو شاگرد تھا ایک، اس نے کہا کہ استاد محترم، آپ جیل میں لیکن میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے تم آ جاؤ. تم جیل کی دیوار کے سائڈ پہ بیٹھ جانا باہر، میں اندر بیٹھوں گا، تمہیں ویسے ہی سکھاؤں گا جیسے سکھاتا تھا. اور ماچس کی ڈبیا میں وہ سوال جواب لکھ کر کسی بھی طرح سے اندر بھیجتا تھا. کئی سال تک یہ سلسلہ جاری رہا. جنہوں نے بھی علم لیا نا، انہوں نے ایسے نہیں لیا. نام بعد میں لوں تو بہتر ہے. ایک عالم تھے، کسی گاؤں میں پڑھانے آتے تھے بادشاہ کے بیٹے کو، جو بھی اس وقت کا تھا. اس دور میں علم کی قدر تھی، تو لوگ بہت زیادہ قدر کرتے تھے ان چیزوں کی. تو جب وہ عالم ادھر آتے ہیں نا، تو ایک بچہ جو بالکل ایسی ارلی ٹین ایج ہوتی ہے، ان کے پاس آیا جب وہ واپس جا رہے تھے پڑھا کر، تو کہنے لگا کہ میں نے بھی آپ سے سیکھنا ہے، مجھے بھی سکھا دیں. لیکن اجازت نہیں تھی اس استاد کو، کیونکہ وہ خلیفہ کے بیٹے کے لیے آ رہا تھا یا جو بھی قصہ مختصر تھا. وہ گھوڑے پہ سوار ہیں تو یہ لڑکا ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا مجھے پڑھا دیں. انہوں نے کہا کہ میری مجبوری ہے، میں تمہیں نہیں پڑھا سکتا. ہاں اگر ایک کام تم نے کرنا ہے تو کر لو، क्या कि जब मैं उसको पढ़ा कर घोड़े पे बैठकर वापस जा रहा होगा तो तुम मेरे साथ साथ चलते रहना, तो जो इल्म देना होगा लेना होगा तुम मुझसे ले लो। उसने कहा ठीक है। 4 साल तक उस्ताद घोड़े पे और शागिर्द पैदल साथ चलते भागते इल्म लेता रहा। और आपको पता के बाद में उसका नाम क्या पड़ा, किसी को पता? इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह, गज़ाल कबीले से और गज़ाल इलाके या जो उनका इलाका था उसका नाम था। ये इल्म जिस्म की राहत के साथ नहीं मिलता। हम तो माफ़ कीजिए बिगड़े हुए लोग हैं, एक्सपॉइल्ड चाइल्ड हम। ज़रा सी हवा चलती है हमें छींके शुरू हो जाती हैं। मैं कहती हूँ ये दौलत कितनी बड़ी है, अगर वाकई अल्लाह ने इसको छुपाया हुआ है, अगर ये भी खुली होती ना शेयर्स की तरह और डॉलर्स और पाउंड्स और सोने चांदी के रेट्स की तरह, अगर इल्म की दौलत खुली फिरती ना तो कोई महरूम ना रहता। अल्लाह ने इसकी खुशी को और इसकी खैर को 7 पर्दों में छुपाया हुआ है, तभी तो फिर थोड़े ही लोग लेंगे। तो सहाबा की मोहब्बतें लफ्जी व मोहब्बतें नहीं थी, सच्ची मोहब्बत के साथ उन्होंने ये काम किया था। और आप देखिए इतने चुने हुए लोग हैं और उनके कफन दफन के लिए चीज़ें कोई नहीं है पूरी। हम कहेंगे हाय बेचारे, आज तो वो बच्चे भी जो ज़िंदगी भर बात ना माने, वो माँ बाप का कफन दफन आखिरी रसूमत बड़ी इज्जत से करते हैं क्योंकि ख़ानदान को शक्ल दिखानी है। तो मरने के बाद आपके मेरे साथ क्या होगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। असल ये देखिए कि अंदर जाके कब्रों में क्या हो रहा होगा। फिर आगे देखिए, कुरान ने मुसलमानों को इनकी कमज़ोरियों से आगाह करने और इनकी इस्लाह पर तवज्जो करने के साथ साथ इनके सिपाहियाना शऊर की आबियारी की थी। इसको हाईलाइट करें, इनको जहन नशीन कराया कि मार्का कारजार में फैसला कुन ताकत अखलाकी ताकत होती है। ये भी हाईलाइट करिए, सबसे बड़ी ताकत पावर कौन सी है? हॉर्स पावर नहीं, अखलाक, करेक्टर। मुस्लिम करेक्टर जो होता है ना ये अनबीटेबल होता है, इससे कोई टकरा के पाश पाश तो हो जाएगा लेकिन ये अपनी जगह से नहीं हटेंगे। और इस अखलाकी ताकत का अहम तरीन शोबा सब्र है, इसको भी नोट करें। कहाँ से मिलता है ये अखलाक, ये किरदार? सब्र से। सब्र सीखें, सब्र सिखाएं, सब्र करें, सब्र कराएं। माँ का सब्र बच्चे में ढलेगा, हलाल लुकमों पे घराने का सब्र इंशाल्लाह नस्लों को पाक रखेगा। तो सब्र बड़ा ज़रूरी है। इनको तलकीन की कि वह रस्म खैर व शर में असबियती जज्बात और दुनियावी मुफादात को बिल्कुल बालाए ताक रख कर सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा, हक के गलबे और आखरत की कामयाबी को पेश नज़र रखें। इसको हाईलाइट करें, ये हैं अल्लाह की मदद लाने वाले जौहर। अल्लाह की रज़ा, हक के गलबे की ख्वाहिश, लियुज़हिरहुल दीन कुल्लिही और आखरत की कामयाबी। आप आज अपनी उंगलियों पर ये लिख के जाएं। तकमील के प्रोग्राम है या आपको जो भी काम दिया जाता है, कोई ड्यूटी, आप अंसारुल्लाह हैं, आप जिम्मेदारान हैं, आप जो भी हैं, ये 3 चीज़ों के अलावा चौथी नहीं होनी चाहिए आपकी डिक्शनरी में, वरना आप नहीं जमेंगे। और दूसरी बात है, आपको साथ अल्लाह की मदद नहीं आएगी। नंबर एक, अगर चाबी खोलते हैं ना दरवाजे की तो अल्लाह की रजा के लिए खोलें, गाड़ी में बैठते हैं ना तो अल्लाह की रजा के लिए, आके सफाई करते हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए, अगर आप यहाँ बच्चों को देखते हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए और हक़ के गलबे के लिए। हम क्यों करते हैं ये खाने पकाने के काम, कभी सोचा आपने? कोई होटल है ये? मैं कैंटीन में जो रोज़ खाना आता है मैं उसके बारे में बहुत क्यूरियस हूँ, क्यों पका के लाती हैं हमारी बहनें, कभी सोचा आपने? किसके घर में खाना नहीं, क्या आप अपना खाना रोज़ अपने साथ नहीं ला सकते? सबके घरों में होता है, लेकिन हक़ का गलबा, सब एक खा रहे हैं, एक शौक आता है, एक अच्छा लगता है। वो सारे कैंटीन के जो फ़ायदे थे वो अभी दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि हक़ गालिब हो जाए, मेरा खाना खा कर ही कोई गालिब आ जाए। हमारे नेबर्स में ऊपर नॉन मुस्लिम है तो अच्छी दोस्ती उनसे चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा लगता है। तो मैं कुछ खाना बनाती हूँ तो उनकी नीयत से एक्स्ट्रा डालती हूँ और मैं अल्लाह को कह रही होती हूँ उस वक्त, अल्लाह ये दावा ट्रे है मेरा, ट्रे में 2-3 चीज़ें डाल के कभी एक दिन, रोज़ नहीं भेजती कि फिर अगले को शायद फील हो, हफ्ते में 1-2-3 दफ़ा ऐसे भेज देती हूँ। तो मैंने एक दिन अभी जब भेजा ना कल परसों, तो वापसी में उसने फ़ौरन ही दोबारा उसने नॉक किया तो ट्रे के अंदर ही ना एक बहुत प्यारा ऐसे वाइट सा था कुछ, मैंने कहा पता नहीं ये क्या चीज़ है, रोटी सी बनी हुई है ना मोटी, तो कहती इट्स वाइट चॉकलेट फॉर यू। उसकी माँ आई हुई थी बाहर से, लताविया से, तो उसने मुझे दिया ना, तो जो सुनाने लगी हूँ कि मैंने आके अपने हस्बैंड से कहा कि देखें आज मुझे फील हो रहा है कि वो हमारा खाना खाते हैं। कल मैंने उसको डांट दी तो मैंने पूछा डू यू ईट माई फूड, कहती यस, उनको मज़ा आता है गर्म खाना, उनकी पसंद को मिल जाता है। तो मैं जो बात करने लगी ना, वो चॉकलेट अवॉइड करते हैं खाना, उसमें कुछ ऐसे फ्रूट्स भी डले, तो मैं उसका छोटा सा टुकड़ा रोज़ इनको सुबह दे के ना, कल भी दिया आज भी दिया, मैंने कहा अब ये दुआ करके खाएं कि अल्लाह इनका दिल खोल दे, हम उनका खाना खा रहे हैं ना, और अगर आप नहीं खाएंगे ना उनका तो फिर मुझे डर है कि वो भी नहीं हमारा खाएंगे। याद रखिए नबी सल्लम की पहली सुन्नत जो आपने मदीना में आके निभाई, रिलेशन डेवलप किए, आपने लोकल लोगों के साथ ताल्लुकात बहाल किए। हम जाते हैं कुरान बांटने, कोई नहीं लेगा आपसे, सिर्फ लोगों के साथ आप अच्छा बिहेवियर करके देखें। तो ये किस लिए? हक के गलबे के लिए और आखिरत की कामयाबी, अल्लाह कबूल कर ले। ये तीन चीज़ों पे आप अपना कोर्स इस्तवार करें। आगे बढ़ रहे हैं, एडवांस कोर्सेज में हैं, छोटे कोर्स हैं, बड़े हैं, छोटे काम करें, बड़े करें, अलबरका करें, लिगत कर रहे हैं, काम जो भी करना है, इस तीन के अलावा चौथी चीज़ ना रखें। फिर आगे कहा कि इनके दिलों में ये बात भी बिठाई कि फतह शिकस्त का फैसला बहरहाल अल्लाह के हाथ में, इसको भी हाईलाइट करें। इवन नबी, इवन नबी, इवन नबी भी फतह शिकस्त के मालिक नहीं है। क्या अल्लाह के नबी इतना बड़ा झटका लेते खुद अपनी मर्जी से? अगर लेते, 70 सहाबा को शहीद करवाते और एक दो मर जाए तो बड़ी बात है। एक देखे ना, सहाबा एक ऐसे ही है ना जैसे हम सब हैं, एक जगह मिलने वाले, काम करने वाले। खुद अल्लाह रहम करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह हम सबको हादसा से बचाए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के 70 साथी एकदम दुनिया से चले जाएं, कितना बड़ा लूप होल है, हम तो लोगों की नजरों में आ जाए। और आप देखिए हैरत मुझे होती है, हमरा उल असद पे अभी जख्मियों को पूरा उठाया नहीं, अभी कफनाया नहीं, अभी जो शहीद हुए उनको दफनाया नहीं, एक और जंग है और उसमें भी चल पड़े। ये बात समझ ही नहीं आती जब तक सहाबा वाला माइंड सेट ना हो। आज हमारे बच्चों को नहीं आती ये समझ बातें, वजह वही है जिस पे शुरू पे बात की थी, सेल्फ सेंटर्ड है। कहेंगे ना समझिए, लो जी घर में इतने लोग फौत हुए हैं और आप फिर एक और जंग में जा रही हैं, मामा क्या हो गया आपको, आपको तो दरसों से फुर्सत ही नहीं, आपको क्लासों से फुर्सत नहीं, और हमें लगता है हाँ हम अपने बच्चों का हक नहीं दे रहे। आज ये भी एक गिल्ट हमें दिया जाता है, आप घर से ही नहीं चला रही, आप बच्चों का ख्याल नहीं करती, आप चली जाती हैं तो बच्चे कंप्यूटर देखते हैं और बच्चे फ़ोन पे, तो माजरत के साथ आप घर में भी होंगी तो बच्चे यही कुछ कर रहे होंगे, आप कौन सा उनको गोद में लेके बैठी होती हैं, और कौन से बच्चे हैं जो जवान बच्चे माओं के साथ बैठ के किचन में काम करा रहे हैं। फासले और दीवारें तो पहले ही पड़ी हुई हैं। तो बहरहाल सहाबा की ये सारी चीज़ें हमें अपने अमल पे तवज्जो दिलाती हैं, और क्या पता चला कि इसी की ताईद और नुसरत किसी कुव्वत को गालिब करती है। ये लिख लें, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अल्लाह आप ही किसी को गालिब करें तो गलबा मिलता है, वरना हमारी कोशिशें कि होने कम से कुछ, हमारे छोटे नोट हैं आपके बड़े नोट हैं, हमारे छोटे छोटे नोटों के नीचे अपने बड़े नोट रख दें, हमारे छोटे छोटे कदम हैं अल्लाह नीचे अपने बड़े कदम लगा दें, हमारे छोटे छोटे हाथ हैं अपने बड़े हाथों से हमें थाम ले। हदीस में आता है ना, जब बंदा मेरी तरफ चल के आता है तो अल्लाह दौड़ के आता है, अल्लाह उसको थाम लेता है। तो ये जो अल्लाह की मदद है ना, इसने ही मेरा आपका बेड़ा पार करना है इंशाल्लाह। लिहाजा इसी के कवानीन और इसी की खुशनुदी को मलहूज रखना चाहिए। इस हकीकत को एक दुआया पेराए में समो कर इनके विरद ज़ुबान किया गया, आल इमरान 27-26 याद है, कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा, कहो अल्लाह मालिक के मुल्क के मालिक, तू जिसे चाहे हुकूमत दे और जिससे चाहे छीन ले, जिसे चाहे इज्जत बख्शे और जिसको चाहे जलील कर दे, भलाई तेरे इख्तियार में है, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। रात को दिन में भी रोता हुआ ले आता है और दिन को रात में, जानदार में से बेजान को निकालता और बेजान में से जानदार को, और जिसे चाहे बेहिसाब रिस्क देता है। सच है कि नहीं? आती है ये दुआ, पढ़ा करें। दीन का काम करने वालों को ये दुआ अजबर होनी चाहिए। मैं कह सकती हूँ कि नामुमकिनात को मुमकिन में बदलने वाली दुआ है, और अल्लाह पे नजरें लग जाती हैं इसके बाद। और क्या हुआ, इनके दिलों से मौत के खौफ को भी ये हकीकत खोल कर निकाला गया कि मौत बहरहाल वक्ते मुकर्रर पर आनी है, यानी मौत का जब वक्त आ जाना है ना, फिर वो आके रहेगी। अल्लाह के इज़न से आके रहेगी, और जान बचाने के लिए अदाए फ़र्ज से कोताही करना ज़िंदगी की घड़ियों को तवील नहीं बना सकता। इसको हाईलाइट करें, हम मौत के डर से घर बैठ जाएंगे तो ज़िंदगी लंबी कोई नहीं होनी। लिहाजा मौत की आंखों में आंखें डालकर तुम्हें इकदाम करना है। इन कीमती इसबाक के साथ इनके सामने एक ज़री नुक्ता ये भी रखा कि जो लोग अल्लाह की राह में सच्चाई के गवाह बनकर अपनी जानें निछावर कर देते हैं, इनका मरना आम लोगों का सा मरना नहीं है। इनकी मौत नहायत ही काबिल एहतराम है। आयत याद आ रही है शुहदा के बारे में। सो इनको आम मरने वालों की तरह मुर्दा न समझो और मुर्दा न कहो। वह अपने रब की बारगाह में हयात नौ से बहरामंद है। इनकी रूहें नौरानी रिस्क पाती हैं, वो अतियात इलाही पाकर मसरूर हैं, और अपने हम मसलक साथियों के बारे में भी इत्मीनान रखते हैं। हम मसलक से मुराद क्या? जो उसी रास्ते पे चलें। सलक का कहते रास्ते को, सालिक चलने वाला, यानी जो उस रास्ते पे चल रहे हैं इंशाल्लाह वो भी इधर ही आएंगे। यूँ शहादत का एक काला मफहूम नुमायाँ हुआ, और अल्लाह की राह में पेश आने वाली मौत के माने ऐसे बदले कि इससे खौफ खाने की बजाय इसके लिए दुआएं मांगी जाने लगीं। इस सिलसिले में आपने तंबीह फरमाई कि शुहदा के गम का इजहार बैन करके और सीना खूबी की सूरत में न किया जाए। एक साल इनकलाबी तहरीक जब रूनुमा होती है तो वो इसी तरह अपनी ख़ास इस्तलाहात पैदा करती है और इनमें मखसूस मानी समोती है और मुरविजा तसव्वुरात के मानी बदल देती। इन सारी तलकीनात से अंदाज़ा किया जा सकता है कि यहाँ जंग कोई दुनियावी कार्रवाई ना थी, ऐन दीनी तकाजा और खालिस इबादत इलाही थी। बात समझ आ गई? यानी जंगें कोई तशद्दुद वाली जंगें नहीं थी बल्कि दीन समझ के लड़ रहे थे मुसलमान उसमें। सेकंड लास्ट पॉइंट क्या है? 11 नंबर, मुनाफिकीन की कुछ तादाद मैदान में बैठी हुई थी जहाँ एक नाजुक लम्हे में मुसलमानों के अंदर इंतशार फैलाने और नज़्म तोड़ने में इनका खासा हाथ था। ये भी नोट कर लीजिए। वहाँ मार्के के बाद उन्होंने खूब खूब चहमगोइयाँ की कि अगर यूं होता तो फलां नतीजा निकलता और वो ना होता तो फलां वाक़यात रूनुमा ना होते। याद आ रही हैं कुरान कहते हैं? तबसरे करने लगे घर बैठ के, तबसरे मैदान जंग में कूद के देखिए, फिर पता लगेगा किस भाव बिकती है। नीचे कि अगर क़्यादत में हमारा कुछ दखल चलता तो जंग उहद का नक्शा यूँ ना होता। क्या मतलब? मैनेजमेंट हमारे हाथों में दे दें, फिर देखें हम क्या करते हैं। हमें लीडर बनाएं, फिर देखें क्या करते हैं। खुद अकबी दर्रे के तीरंदाजों के जहन पूरी तरह साफ ना थे। इनसे मदीना में जब बाज़ पुरस की गई कि तुमने अपना मोर्चा क्यों छोड़ा तो उन्होंने बोदे यानी कमज़ोर उजरात पेश किए, जिन्हें सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं बल्कि हकीकत में तुम लोगों को ये बदगुमानी हुई कि हम तुम्हारे साथ खयानत करेंगे और तुम्हारा हिस्सा अदा न करेंगे। कुरान ने इसी बदगुमानी की तरदीद करते हुए कहा किसी नबी की शान से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वह खयानत करेगा। आले इमरान 161। बात वाज़े, बदगुमानियाँ भी पैदा करने वाले लोग होते हैं, शकूक व शुबहात पैदा कर देते हैं। और आखिरी नुक्ता है 12 नंबर का कि दुश्मन ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्मी कर दिया तो किसी साथी ने कहा कि इन ज़ालिमों के लिए बददुआ कीजिए कि अल्लाह इनको हलाक कर दे। आपने जवाब दिया कि मुझे दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया, ना कि लानत बरसाने के लिए। फिर दुआ फरमाई, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये लोग मुझे, मेरे मिशन को, ज़िंदगी की हकीकतों को जानते नहीं। हम पहले भी इस बात को देख चुके हैं क्या कि इस जवाब और इस दुआ में नबी सल्लम का वो नुक्ता नज़र पूरी तरह मुनक्किस है जिससे आप अपने मुखालिफीन को देखते थे। साफ ज़ाहिर है कि आपके अंदर कोई ज़ाती जज्बे इंतकाम मौजूद ना था। आप इनका खात्मा नहीं चाहते थे, सिर्फ इनकी इसलाह चाहते थे। इनके जंगी इकदामात का भी आपने जवाब दिया तो मजबूरी से दिया क्योंकि इसके बगैर कोई चारेकार नहीं था। क्या समझ आया? कि मुसलमान शौक से जंगे नहीं करते, ज़रूरत के तहत होती हैं। आज भी आप देखिए दीनी भाग दौड़ जो की जाती है हमेशा उस, ज़रूरी नहीं है कि हमें उसमें कोई मज़ा ही आ रहा है या शौक है, लेकिन वो हालात और वक्त की ज़रूरत होती है। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे तमाम मौक़ों पे साबित कदम रख दे। देखें उनकी जंगें, हमारे प्रोग्राम्स। मैं तो कहती हूँ हमारे तो खाने पीने के साथ प्रोग्राम चलते हैं ना। कभी आपको नहीं भी समझ आती, नहीं दिल करता, नहीं मूड, तो ये सोच लीजिए कि ये मकसद क्या है। जब मकसद पे नज़र होती है ना तो कोशिशों का रुख सीधा हो जाता है। बस अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारे दिलों को बदल दे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे हम सबको। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।